आगे देखिए, कुरान मीज़ान है, नज़ूले किताब और शरीयत का मकसद और खुल के समझ आता है आयत नंबर 17 से 19 में, अल्लाहुल्लज़ी अनज़ल अल किताब बिल हक, अल्लाह वो है जिसने किताब को हक के साथ नाजिल किया, और मीज़ान तराजू, वमा युदरी का लल्ला साथ करीब, क्या पता कि क़यामत बड़ी ही करीब हो। जल्दी मचाते हैं इसकी वो लोग जो ईमान भी नहीं लाते इस पे, यानी शोर मचाया हुआ है क्यामत का बानी का बानी, हालांकि ईमान भी नहीं है, करना क्या उसके लिए ये नहीं पता। इसके बरक वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले जिनको क्यामत खुली आंखों से नजर आती है, मुशफिकून मिनहा, वो तो इसके तस्करे से डर जाते हैं। सहाबा कराम को देखिए, हशर हिसाब किताब के नाम पे रोया करते थे, यानी इतना करके रोते थे। मोमिन जितना नेकियां करता है उतना क्यामत से ज्यादा डरता है, और फाजिर और फासिक और काफिर जितना बेअमल होता है उतना मजाक करता है। फिल्मों का नाम क्यामत है, हीरोइन को क्यामत कहेंगे और न जाने क्या कुछ। तो याद रखो कि ये आएगी, और जब आएगी तो तुम्हें लग पता जाएगा। आयत 19 का जुमला अल्लाहु लतीफ़ुम बीवादिही, ज़रा से इसको समझते हैं, इससे क्या मुराद है? अल्लाह अपने बंदों से बड़े ही लुत्फ़ का मामला करता है। अगर आप अस्माउल हुस्ना सुन रहे हैं मेरे कहने पे, मैंने पीछे दो तीन बार रिकमेंड किया मेज़ पर अस्माउल हुस्ना सीरीज़ को, या बाद में सुनेंगे ना तो लतीफ़ को सुनिएगा। दो बड़े खूबसूरत मानी हैं, गैर मखसूस तरीके से अपनी तदबीर को कर लेने वाला और लुत्फ़ फरमाने वाला, बारीक बीन भी है, सॉफ्ट स्विफ्ट। यहाँ अल्लाह का लुत्फ, अल्लाह का हमारे साथ नरमी का मामला क्या है? नंबर एक, अल्लाह थोड़े अमल को कबूल करके जज़ा बड़ी देता है। आप देखिए कि 50, 60, 70 साल की उम्र, पैदा होने से लेके बिलफर्ज किसी ने कोई एक गुनाह भी ना किया हो मरने तक, चलिए 60 साल, और उसके बाद जज़ा क्या है? हुम फीहा खालिदून, ये उसका लुत्फ़ नहीं है? लोग कहते हैं एक बार पैसे लगा लो फिर हमेशा के लिए चीज़ अपनी हो जाएगी, इसकी निस्बत के हर हफ्ते उसका बिल दें, हर महीने उसका बिल दें। तो अल्लाह ताला आपके मेरे थोड़े से अमाल की बहुत बड़ी कदर करता है। और दूसरा इससे मुराद है अल्लाह टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, अल्लाह मुश्किलों को आसान करता है, अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी करने वाले को जल्द सजा नहीं देता, और अल्लाह ताला उम्मीद रखने वाले को ना मुराद नहीं लौटाता। कितने दुख लेके बैठे होते हैं ना लोग, आपका दिल तोड़ते हैं, अल्लाह लाके उसको मोहब्बतों से जोड़ देता है। इतनी बड़ी पहाड़ जितनी मुश्किल आती है मिनटों में हल हो जाती है। जब कोई मसला आता है लगता है ज़िंदगी ख़त्म, ये कॉज ख़त्म, ये प्रोजेक्ट फेल, बस अगले ही चंद घंटों या कुछ दिनों में, नहीं 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 वो सब ठीक हो गया। ये कौन करता है? अल्लतीफ़ करता है, अल्लाह आपकी मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ता। फिर इसी तरह से आप देखिए, अल्लाह उम्मीद रखने वाले को मायूस नहीं करता ना, तो अल्लाह मांगने वाले को खाली हाथ भी नहीं लौटाता, ये उसका लुत्फ़ है। और अल्लाह गलतियों को माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद भी करता है। अल्लाह ताला उस शख्स पर भी रहम करता है जो खुद पर रहम नहीं करता, ये भी कितनी बड़ी बात है। तो क्या पता चला, आज से आप अल्लाह से मांगा करें, ए अल्लाह तेरे अल्लतीफ़ होने के सदक़े, हम तुझे तेरे अल्लतीफ़ होने के वास्ते और वसीले से पुकारते हैं, हम पे भी अपना लुत्फ़ कर दे। फिर इसके बाद बहुत प्यारी आयत है, दुनिया की हकीकत, दुनिया आखरत की खेती है, मन का न यूरी दो हरसल आखिरा, जो इस दुनिया में रहते हुए आखरत की खेती चाहता है हम ज़्यादा कर देंगे उसकी खेती को, और जो इस दुनिया की खेती का इरादा करता है नूती ही मिनहा, हम इसको इसमें से दे देते हैं, लेकिन वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, उसका आखरत में फिर कोई हिस्सा नहीं। पहले बारे में बल्कि दूसरे बारे में, यानी सूरह बकरा में इसको हमने किस अंदाज से समझा था? रब्बना आतीना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, अल्लाह से दुनिया भी मांगी आखरत भी मांगी। थोड़ा सा जब हम आगे पढ़े तो हमने इसी मजमून को किस चीज़ से समझा था? सूरह तौहा में अल आजिला, अराद अल आखिरा और अराद अल आखिरा। अब यहाँ खेती, लफ्ज़ खेती के से क्या आता है? बीज डालना, पानी देना, मेहनत करना, और जब बीज डाल दिए तो आसमान पे नज़रें लगाकर उम्मीद रखना कि बारिश हो, फिर जब फसल पक गई है तो फिर आसमान पे नज़रें कि बारिश ना हो, फिर उसको काटना और उसको इस्तेमाल करना। देखा जाए तो आप और मैं दुनिया की ज़मीन पे आखिरत के बीज डाल रहे हैं। वहाँ की फसलें, वहाँ क्या खाएंगे, वहाँ क्या पहनेंगे, तो जो दुनिया की ज़मीन में बीज ही ना लगाए, कल आखिरत में वो काटेगा क्या? हम जानते हैं कि बीज डालने का मौसम होता है। अगर उस मौसम में बीज ना डाले तो सारा साल किसान बैठा रहे घर, फिर फाके आए, भूख आए। बिल्कुल इस वक्त भी रमज़ान और इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो भी हालात है ना, कुरान का ये हल्का सा सफ़र जो आप और मैं तय करें ना, इसके बाद बीज डालने का मौसम है। और जुमला क्या है कि ये दुनिया रब चाही तो आखिरत मन चाही, आयत 21 से 24 में इसी मज़मून को समझ लीजिए कि दो काम इकट्ठे नहीं होंगे, कि ये दुनिया भी आपकी चाहत से हो, आप जो हलाल हराम को एक कर दें फिर भी कुछ ना हो तो आखिरत भी ऐसी हो नहीं, या यहाँ अल्लाह की मान लें या फिर वहाँ माननी पड़ेगी। फ़ायदे का सौदा किसका है? जो यहाँ मान ले वहाँ मनवा ले। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम मा तदऊन, वॉट एवर यू विल ऑर्डर, वहाँ तो जाकर आप पेश कर सकते हैं, भाई मैंने ये नहीं ऑर्डर किया था, वो किया था। कभी आप घर से ऑर्डर करें फूड और जब आए तो कुछ और हो, जो होटल में बैठे हैं अब जो शेफ वो लेकर आए आपके सामने खाना, आप कहते मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया, होगा तो सॉरी सॉरी ये तो किसी और का ऑर्डर है, फौरन रिप्लेस कर देगा। आप और मैं फुल चॉइस रखते हैं इस दुनिया में रहकर आखिरत का किस स्टैंडर्ड का खाना ऑर्डर करें, VIP लॉन्च में मिलने वाला या इकोनॉमी क्लास वाला, इट्स आवर चॉइस। जितना गुड डालते जाएं उतना मीठा होता है ना, जितनी मेहनत इस दुनिया में करते जाएंगे उसका रिटर्न और प्रॉफिट वहाँ मिलेगा इंशाल्लाह। फिर आगे आए 25 से 26 में, टॉपिक क्या है? दुआएं किन की कबूल होती हैं? हम सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, तो फरमाया वहुअल्लज़ी यकबलुत तौबा, वो ज़ात वो हस्ती जो अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है, व याफ़ु अनिस सय्यिआत, और वो उसकी सय्यिआत यानी बुराइयाँ, शॉर्ट कमिंग, कमज़ोरियाँ उनसे दरगुजर भी करता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे, छोटी छोटी बात पे नहीं पकड़ता बंदे को जब बंदा खालिस होता है। जैसे जिस मुलाज़िम पे आपका ट्रस्ट हो जाता है ना, फिर आप उस पर शक नहीं करते, फिर आप उसकी कितनी कमियाँ कितनी गलतियाँ बर्दाश्त करते हैं, कोई बात नहीं, बंदा अपना है मुखलिस, झूठा नहीं, चोर नहीं है, धोखा नहीं देगा, बस आपके मेरे लिए ये काम है। आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हों तो अल्लाह को उसका बन के दिखाएं। कुलिन सलाती व नुसुकी, और इसी तरह की आयतों को जिन में ले आए तो फरमाया कि वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, अल्लाह सिर्फ वो नहीं देगा जो मांगा, एक्स्ट्रा भी। कभी कभी होता है ना, चलो जी ये मांगा था ये आपको तोहफे में मिल गई, और हमें तो बड़ा शौक है तोहफे लेने का सब्जी वाले से, अच्छा थोड़ा धनिया तो दो, आज आप मांगेंगे वो कहेगा आपको तो धनिया कितने का। पहले दौर में बड़ा रिवाज था, दुकानदार से कोई चीज़ ली ना तो एक मुट्ठी भर के डाल देता था, कहता जाओ, ये एहसान का मामला था। तो याद रखिए मोमिनों का दर्जन 12 का नहीं 13 का होता है। हर वक्त अभी इस प्लस माइनस में गुजारेंगे ना, आपसे क्या कहा था और क्या हुआ, कितने में बात हुई कितने में नहीं हुई, मैंने ये कह दिया था, तो बात नहीं बनती। दुनिया में आप प्रोफेशनलिज्म पे चले जाएं, आप टाइम ज़्यादा लगाते जाएं, टाइमर बढ़ाता जाएगा, आपकी पे ज़्यादा हो जाएगी, आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। ये दुनिया का, मॉडर्न दुनिया का तो ये असूल, और लगता भी ये कि इंसाफ है, ठीक है, जो पैसों के लिए वो काम करेगा उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी मासी से अगर आपने एक एक्स्ट्रा घंटा काम कराया तो उसको पैसे दीजिए, हाँ ये दुनियादारी तो है, लेकिन जहाँ मुरव्वत है, जहाँ इखलास है, जहाँ प्यार है, वहाँ कहते फिर क्या हुआ, अच्छा मेहमान आ रहे हैं कोई बात नहीं मैं रुक जाती हूँ। तो ये जो मामला होता है ना, अल्लाह के साथ जब इसको बढ़ा दें तो यही असल में एहसान का दर्जा। सहाबा कराम की जो खूबियाँ हम पढ़ रहे हैं दूसरे सेशंस में, तो उसमें एक क्या थी कि उन्होंने जितना कमिट किया था ना नबी से, उसे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया था। हम प्लस माइनस के चक्कर में कितनी नेकियों को खो देते हैं, फिर इसका ये जुमला वहुअल्लज़ी यकबलुत तौबा, इसको ज़रा अलग से भी समझ लेते हैं। सच्ची तौबा क्या है? इंसान तौबा करने के बाद इन गुनाहों से नफरत करता है, उनकी तरफ नहीं जाता और नदामत महसूस करता है। इसके बरक्स एक झूठी तौबा भी होती है, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च, अल्लाह से बड़ा डर लगता है, अल्लाह से बड़ा डर लगता है, तो डर लगता है तो फिर ये काम छोड़ दो, काम भी वही करना है। आप इसको एक मिसाल से समझिए, आपके घर में दावत थी और आपने बहुत कीमती डिनर सेट निकाल दिया। आपकी मेड बर्तन धोने लगती है तो आप उसे कहते हैं कि सारे ही बर्तन हैं लेकिन ये सेट बहुत कीमती है, इसको एहतियात से धोना। अब आप देख रहे हैं कि वो बेचारी बड़ी घबराहट में है, बड़े डरते डरते प्लेट्स पकड़ रही है, लेकिन इतने में अचानक उसके हाथ से एक प्लेट गिरी और टूट गई। आप देख रहे हैं, दुख तो आपको होगा लेकिन गुस्सा नहीं आएगा। क्यों भला? किसका कसूर नहीं है? क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीज़ों के लिए जब एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं ना तो भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अच्छा भाजी कौन सी ये प्लेट है, अच्छा ये एहतियात से पकड़नी है और इसको नहीं, और उसी में से एक प्लेट पकड़ के ज़ोर से ज़मीन पे मारती है और वो चिकनाचूर होती है। आप मुझे बताओ आपको कैसा लगेगा? अब आपको गुस्सा आएगा दुख से ज़्यादा, और उस पर गुस्सा आएगा मैंने तुम्हें ये कहा और तुम क्या कर रही हो। अच्छा वो आगे से क्या कहे, बाजी अच्छा अच्छा अब नहीं करूँगी, अच्छा बाजी अब माफ़ कर दे अब नहीं कर, फिर दूसरी भी प्लेट पकड़े और वो भी फेंक दे तो आप क्या करेंगे? ये है झूठी तौबा, गुनाह नहीं छोड़ते और मुँह से कहते रहते तौबा तौबा तौबा। बाज़ लोग तो फिल्में देखने के दौरान तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं क्या गिन रहे होते हैं। ठीक है, अगर अल्लाह भी याद आ रहा है तो मैं तो मना नहीं कर रही, लेकिन बात बंद है कि बग़ैर दिल के शामिल किए तौबा सिर्फ ज़ुबानी बात है। फिर इसके बाद एक और चीज़ इसके बारे में नोट कर लें कि जो अल्लाह ने कहा ना कि अल्लाह अपने फजल से ज़्यादा देता है, यकबलु तौबा निबादी ही में एक ये भी एंगल है कि बंदा तो अपनी हैसियत के मुताबिक गुनाहों से बचता है ना, अल्लाह अपने फजल से और भी ज़्यादा कर देता है और फ़र्ज़ नमाजों के बाद की हुई दुआ और तौबा कबूल होती है, कुरान पढ़ने के बाद की दुआ कबूल होती है और नेक अमाल करने के बाद की दुआएं कबूल होती हैं। हज़रत ज़करिया ने जब या हज़रत मरियम के पास देखे बेमौसम के फल और वहाँ इबादत भी हो रही थी तो फ़ौरन बेटा मांग लिया, अल्लाह ने बेटा दे दिया। क्या पता चला? हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता निबादिही में ये सारी चीज़ें आती है कि बंदा भी तो अल्लाह की बात को कबूल करे, फिर उसके बाद सदका और खैरात करे, उसके बाद दुआ करे, दुआ दुआ कबूल होगी, तौबा कबूल होगी। तो गुनाह हो गया, होगी टंग स्लिप, जिस्म के किसी उस से कोई भूल हो गई, सदका कीजिए और अल्लाह के आगे सजदे में सर रख दें कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करेगा। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला इंसान को उसकी दुआ से भरकर देता है, ये उसकी कबूलियत का एक दर्जा होता है, और मुश्किल आने पर कसरत से इस्तगफार करना और दुरूद पढ़ना ये भी दुआओं और तौबा की कबूलियत का बायस बनता है, और इंसान को अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि ये तो हम प्लस माइनस की बातें कर रहे हैं ना, एक जुमला लिखिए कि अल्लाह का बंदों की तौबा से क्या जाता है, अल्लाह को क्या मिलेगा? आपने तौबा की, आपको जन्नत मिल गई, अल्लाह को क्या मिला? तो लिख लीजिए कि अल्लाह बंदों की तौबा से खुश होता है। एक बंदा बार बार गुनाहों के बावजूद जब अल्लाह के सामने आता है ना तो अल्लाह को लगता है कि इसको पता है मैं इसका रब हूँ। तो क्या पता चला कि इंसान के बार बार के गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला ना सिर्फ ये है कि उसको माफ़ करते हैं बल्कि उसकी बुराइयों से दरगुजर करके इनको नेकियों में बदल देते हैं। और वो हदीस तो आप ज़रूर सुनते होंगे, सही मुस्लिम की वो रिवायत है 10156, हज़रत अबू हुरैरा रावी है कि एक शख्स जिसकी सवारी गुम हो गई सहरा में है, खाना पानी भी उसी पे था, और सहरा में जब खाना और सवारी ना रहे तो इसका मतलब कि जितनी देर भी आप भूखे रह सकते हैं रह लें, फिर आपने मर जाना है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। और जब बिल्कुल मायूस हो गया तो आँख लगी, तो जब आँख खुली तो सामने सवारी और खाना मौजूद है, इतना खुश होता है, कहता है ए रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ, गलती से, यानी एक्साइटमेंट हो गया। जुमला तो शिर्क वाला है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा की वजह से इससे ज़्यादा खुश होता है जो तुम में से किसी को सवारी पा लेने की वजह से होती है। तो क्या हम तौबा करके अल्लाह को खुशी देना चाहते हैं? अल्लाह हमें पक्की सच्ची तौबा की तौफीक दे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आयत 27 से 29 में रिस्क अल्लाह के हाथ में है, कोशिश हमारे हाथ में है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की ज़रूरत है, घर बैठे तो रिस्क नहीं देता ना अल्लाह, चिड़िया भी जाती है तो फिर ही मुँह में दाना लेकर आती है ना। तो वलऊ बसतल्लाहु रिस्क अली इबादिही, अगर अल्लाह अपने बंदों का रिस्क खोल दे लबगौ फिल अर्दी, वो तो सरकशी करे। और अमूमन देखिए दुनिया में यही होता है, जब तक पैसे खर्चा पानी लिमिटेड है तो हर चीज़ में कुछ तवाज़ुन है। जब पैसा खुला आता है और अल्लाह रहम करे जब उसमें कुछ ना कुछ नाफरमानी का ज़रिया भी हो, तो फिर सबसे पहले तो कपड़े हल्के होते हैं, सरकशियाँ, फिर बड़ी बड़ी शादियाँ, फिर बड़ी बड़ी दावतें, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि खुशी के मौके बगावत के मौके बन जाते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, मैं तो अंदाजे से देता हूँ, वलाकि युनज़्ज़िलु बिकदरि मा यशा, मैं तो लोगों को अंदाजे से देता हूँ। देखिए, आपके सामने 1 लीटर का ग्लास है या 1 गैलन है, 1 लीटर वाले में कितना पानी या दूध आएगा? मैक्सिमम 1 लीटर। 1 लीटर से जितना ऊपर होगा ना, वो बाहर गिरेगा। ये होता है लोगों के साथ, जो उनका ज़र्फ होता है ना, वो छोटा होता है। कुछ लोगों के हाथ में 1 लाख रुपए आप दे दें, जाके किसी को मार भी आएंगे, शोबाजी दिखाएंगे, 1 लाख रुपए मेरे पास। और कुछ के ऐसे 1 करोड़ भी होता है तो उनको देख के पता भी नहीं लगता। तो ये जो छिछोरपन, और जैसे वो कहते हैं ना कि इंसान बाहर ही निकलता रहे अपने कपड़ों से, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। फिर इसमें एक और चीज़ जो हमें समझ आती है, वो क्या है कि फजीलत का सबब तकवा है। लोग किसी के माल और दौलत को देख कर उसकी इज्जत करते हैं, अल्लाह कहते हैं नहीं। रिज़्क़ की तंगी ना तो जिल्लत का सबब है और ना रिज़्क़ की फराही फजीलत का सबब है। अमूमन लोगों की गर्दनें झुकने लगती हैं बड़े घरों और बड़ी गाड़ियों को देखकर, और उन लोगों के आगे वो ऐसे बिछते हैं कि जैसे शायद अल्लाह के आगे भी ना कभी बिछे हों। तो ना ये अच्छी चीज़ है ना ये बुरी चीज़ है, ये अल्लाह का फैसला है। फिर आफात इंसानों के गुनाहों की वजह से आती हैं। 30 से 31 का टॉपिक है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, और जो भी मुसीबत तुमको पहुंचती है, ये तुम्हारे हाथों का किया धरा है। वह याफ़ुन कसीर, बहुत सारे गुना तो वो माफ़ भी कर देता है, ओवरलुक कर देता है, और तुम आजिज़ करने वाले नहीं हो ज़मीन में, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई वली और नसीर भी नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, जब भी कोई तकलीफ़ आए, खुद से पूछे मैंने क्या किया। अक्सर माएँ अपने बच्चों को ताने देती हैं, अब वो बेचारे बाहर से आए, सर्दी लग गई, स्नीजिंग है, टेम्परेचर है, तो माँ आगे से क्या कहती है, और जाओ खुली जगह पे, मैंने कहा था ना जैकेट पहन के जाना, चलो जी जैकेट नहीं पहनी तो ठंड लग गई। आप ज़रा से इसको इमेजिन तो कीजिए, कभी हम अपने ऊपर भी ये बात सोचते? आज से क्राइटीरियन बनाए, आपका बच्चा ही क्यों ना आपको सताए, आपकी रोटी पकते पकते हाथ से गिरी और नीचे ज़मीन पे आ गई, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी तकलीफ, फौरन सोचे मैंने क्या किया। और ये अगर सोच मिल गई ना, तो बंदा इतना साफ सुथरा हो जाता है कि अपने एक एक बोल और एक एक अपने जुमले को तोलता है कि मेरा किसी किसी का मैं दिल ना दुखा दूं। फिर इसमें लफ्ज़ वली देखिए, रियल प्रोटेक्टर अल्लाह है। सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, और इसी तरह से जलजले आ जाए, वो जो बेचारे इफेक्टेड होते हैं ना, उनका असल फिर मामला अलवली के साथ होता है। लोग 4-5 दिन कुछ हेल्प करके बाद में ठंडे हो जाते हैं, अल्लाह बाद में भी उनकी टेक केयर करता है। फिर उसके बाद आगे आयत नंबर 32 से 35 है, बहरी जहाज़, अल्लाह ताला की अजीम निशानी और नेमत है। व मिन आयातिहिल जवारी फिल बहरी कल आलाम, और उसकी तो निशानियों में से हैं वो बड़े बड़े जहाज़ जिन पे झंडे लगे होते हैं। आलाम वही लफ्ज़ है जिसको उर्दू में हम अलम कहते हैं ना, अलम बरदारी। इल्म भी यही है, इल्म भी बंदे को शान देता है, यानी वो जो बादबानी कश्ती है ना, उनकी तरफ इशारा है। अल्लाह कहते, कभी तुमने सोचा अगर मैं इस हवा को रोक लूँ जिसकी वजह से ये चल रही है, खड़े रहोगे भाई समंदरों की पूछ पुछ पे खड़े रहोगे और तुम्हारे जहाज़ रुक जाएंगे? गौर करो, निशानी है इसमें। और अगर अल्लाह उसको डबो दे फिर क्या हो? बहुत सारों से वो माफ़ करता है। क्या पता चला कि वो पानी जिस पे एक सुई रखी जाए तो वो डूब जाए, उस पे मनो टनो वजन वाला जहाज़ नहीं डूबता। क्या ये निशानी नहीं? कभी गए कश्ती में बैठे किसी समंदरी सफ़र पे गए तो इस आयत को याद कीजिएगा। तो क्या फिर इंसान वहाँ भी गुनाह करे? आज तो लोग पानी के करीब जाकर वैसे ही आपे से बाहर हो जाते हैं। हर वो गुनाह जो ज़मीन पे किया है, वो भी कहते हैं हम पानियों पे करके आएंगे। बड़े बड़े क्रूज, ओवरनाइट शिप्स, और कई के दिन वहाँ रहने वाले, आप बहरी जहाज़ में चले जाएं, आपको ऐसे लगता है आप किसी शहर में आ गए। बड़े बड़े मॉल्स हैं अंदर, बड़े बड़े बैंक्स हैं, गाड़ियों समेत सैकड़ों लोग एक एक जहाज़ के अंदर होते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा फिर पारे का मे ये सूरत का मेन थीम आ गया, इकामते दीन के लिए जिद्दोजहद करने वालों के औसाफ। क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो फिर दीन नाफिज होगा। इसको क्राइटेरिया बना, ये है असल में पूरी सूरत में से आपके मेरे अमल के नुक्ते। फमा ऊती तुम इन शैयन, और जो भी तुम दिए गए हो कोई चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इच्छी बिच्छी, फमताउल हयात दुनिया, ये है दुनिया का ही सामान, यानी थोड़ा मिला है या ज़्यादा, छोटी चीज़ मिली कि बड़ी, सस्ती वाली चीज़ मिली या बड़ी कीमती मिली, ब्रांडेड मिली या नॉन ब्रांडेड मिली, है ये दुनिया की ज़िंदगी। वमा इंदल्लाह की खैर व अबका, जो अल्लाह के पास है ना वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला। बेहतर को आप कह ले बेटर और आपका को कह ले ड्यूरेबल। अमूमन सस्ती चीज़ें होती है ना वो ख़राब हो जाती है। आप कहते हैं चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं भी है ना, लेकिन ले लो क्वालिटी अच्छी है, ख़राब नहीं होगी, ये है अबका। आखरत बेहतर भी है और ड्यूरेबल भी है। सस्ता लेंगे थोड़े दिन चलेगा, महंगी चीज़ ज़्यादा दिन चलेगी। कभी कभी कोई महंगी चीज़ सस्ती मिल जाए और ड्यूरेबल हो, यह है नूरुन अला नूर। तो क्या पता चला कि इस दुनिया में से आप और मैं अपनी नेमतों में से दी बेस्ट थिंग को आखरत के लिए इन्वेस्ट कर दें। फिर अगली खूबी, अल्लाह रब्बी में तवक्कलून। आइए ज़रा लिस्ट आउट करते हैं इन खूबियों को। सबसे पहली बात देखिए, गुनाहों की है। छोटे गुनाहों का इंसान को हलाक कर देना कुरान सुन्नत से साबित है। ज़ाहरी और बातनी बेहयाई से बचने की दुआएं करनी चाहिए। फिर इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत है 65:16, सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया नेकी अच्छा खुल्क है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम नापसंद करो कि लोगों को इसका पता चले। तो पहली चीज़ क्या है, गुनाहों से माफ़ी मांगना। फिर अगली चीज़, ऐसे लोगों की खूबियों में वामरुहुम शूरा बैनहुम, यानी वही लोग दुनिया में शरीयत को नाफिज करेंगे, अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगे, जो अपने काम मशवरे से करेंगे। इससे एक तो आपको मशवरे की अहमियत पता चलती है, दूसरा अहले ईमान की सिफत है कि वो बाहम मशवरा करते हैं और मशवरे में खैर बहुत है। अल्लाह के नबी नबी थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि दुश्मन आ रहा है क्या करें। एक बिल्कुल आम शख्स जो अरब भी नहीं है, सलमान फारसी, अल्लाह के नबी यहाँ खंदक खोदते थे। अच्छा ये ठीक है, मान लेते थे आप। अल्लाह ने सूरत आल इमरान में गज़वाए ओहद के बाद के सीक्वेंसेस में नबी को हुक्म दिया वशाविर हम फिल अम्र, कि ये ना हो कि अब इनसे गलती हो गई है तो अब आप इनसे मशवरा लेना छोड़ दें। तो क्या पता चला कि मशवरा लेना चाहिए, मशवरा इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाता है, मशवरे से एहसास से जिम्मेदारी पैदा होती है। आप किसी को भी किसी मशवरे का हिस्सा बना लें, वो आपका पार्टनर बन जाएगा, वो आपका बोझ उठाने वाला बन जाएगा। और जब किसी कौम ने मशवरे का तरीका इख्तियार किया तो इनके पास जो कुछ मौजूद होता है ना उससे बेहतर चीज़ की तरफ रहनुमाई की गई। तो क्या पता चला कि वन मैन शो नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, बस जो मैंने कह दिया वो नहीं चाहिए। वट एवर आई से, फिरौन ने क्या कहा था तुमसे, तुमने मेरे से पूछे बगैर कलमा पढ़ लिया, ये कैसी बात है। यानी फिरौनियत के निज़ाम में ये होता है कि जो मैं कह दूँ वही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर उसके बाद बुराई का बदला लेने वालों पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। 40:43 में अल्लाह ने एक जनरल असूल दे दिया, व जजाउ सैयतिन सैयतु मिस्लुहा, दैट्स इट। हम कहते हैं टिट फॉर टैट, यहाँ वही बात है, बुराई करोगे बुराई मिलेगी। और आप सूरत रहमान में आगे पढ़ेंगे वह हल हल जजाउल एहसान इल्ल एहसान, यानी नेकी के बाद नेकी ही मिलेगी, यहाँ उसका ऑपोजिट है। आज आप किसी के साथ बुरा करें या तो आपके साथ ही बुरा हो जाएगा या आपके बच्चों में से किसी के साथ बुरा हो जाएगा, यानी बुराई ज़रूर कहीं ना कहीं से असर उठाकर आपको झांकती है। हाँ लेकिन अगर माफ़ कर ले, अपने आप को बेहतर कर ले, और अगर जुल्म हुआ है तो बदला ना ले, ऐसे सारे कामों को करने वाले ये हैं वो लोग जो दीन को नाफिज करेंगे। और जिन्होंने निफाज़े दीन में काम करना है, ज़रा बर्दाश्त तो करो। आज हमारा मसला बर्दाश्त का है। हम रज़ी अल्लाह अन्हु वाली सीरीज़ में सहाबा किराम की जो यूनिक सिफात पढ़े जो कभी सोची भी नहीं होती, उनमें ये खूबी थी कि वो बर्दाश्त बहुत करते थे, उनके अंदर बड़े हौसले थे, वला मन सबर व गफरा, जिसने सब्र किया और बख्श दिया, इन नज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर, है ये बड़ी हिम्मत के कामों में से।